है कि ये महसूस हो रहा हो कि बहुत मुख्तलिफ टॉपिक आ रहे हैं, और कहीं किताल की बात है, कहीं इर्तेदाद की बात आ गई, फिर आगे ईमान की बात है, फिर पीछे हमने खर्च करने की बात देखी थी, तो अब आखिर आगे देख अगली आयत में हमें शराब और जुए की बात दिखती है, लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कि इन सब के अंदर रब्त है। हम जिहाद के पर मज़ीद बात नहीं करेंगे इस आयत की रोशनी में जो हो गई, क्योंकि इसको हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन बस मुझे तो ऐसे लगता है कि जितना एक इंसान अपने नफ्स को अल्लाह की अतात में खपाता जाता है, उतना ही अल्लाह ताला उसके लिए बाकी कामों को आसान कर देते हैं। तो हम देखेंगे आयत नंबर 219 को, काफ़ी अहम आयत है और पहली दफ़ा ये मौजू इधर आ रहा है, तो इंशाल्लाह इसकी हम थोड़ी सी बैकग्राउंड को भी समझेंगे। यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसर, लोग पूछते हैं कि शराब और जुए का क्या हुक्म है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कह दीजिए कि इन दोनों चीज़ों में बड़ी खराबी है, लेकिन साथ ही साथ वह मुनाफी उलिन्नास, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफे भी हैं, नफ़ा भी है, फ़ायदा भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन वह इस्महुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। अब देखिएगा आयत ख़त्म नहीं हुई, ये है असल में खूबसूरती इस आयत की जो आप बाद में देखेंगे। व यसअलूनका माज़ा युन्फिकून, लोग पूछते हैं कि हम राहे खुदा में क्या खर्च करें। पीछे भी पूछा था ना पिछले सबक में, अब दोबारा पूछते हैं, तो क्या जवाब दीजिए। कुलिल अफ़, आप फरमा दीजिए कि जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च कर दो, यानी बस ज़रूरत का रखो, कुछ जमा नहीं अब कर सकते और ख़र्च कर दो। इस आयत से यही बात मिलती है। हाँ, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए साफ साफ अहकामात बयान करता है शायद कि तुम दुनिया और आखरत दोनों की फ़िक्र करो। यहाँ आप देखिए कि सवाल से आयत शुरू होती है, पहली बात यसअलूना का, ये सवाल किसने पूछा? सहाबे करम ने पूछा, क्योंकि हर यसअलूना का पे आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वरना बात जो है बिल्कुल बदल जाती है। और मैंने बस लोगों को इस फ़र्क को सामने ना रखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट करते हुए देखा। सवाल करते हैं आपसे, कौन सहाबा कराम, किसके बारे में? अनिल खमरी, खमर के बारे में। लफ्ज़ खमर जो है ना, खा मीम रॉ से शराब को कहते हैं। अरबी डिक्शनरी में अलखमरु मा खामर अल अकल, हर वो चीज़ जो अकल को छुपा दे वो खमर है। नशा, नशे की हालत में अकल ख़त्म हो जाती है ना बंदे की। इसी से ये औरत की ओढ़नी जो बड़ा दुपट्टा है उसको खीमार कहते हैं, और पता चलता है कि सर की तरह सीना भी ढका होना चाहिए ओढ़नियों में। बहरहाल, दूसरी चीज़ जिसके बारे में पूछते हैं वो है मैसर। मैसर का लफ्ज़ या सीन रॉ से है, यसर कहते हैं अरबी ज़ुबान में आसानी को, उसी लफ्ज़ से फिर मैसर बन गया आसानी से मिलने वाला माल, ईजी कमिंग। आप कह लें कि ईजी कम जो भी चीज़ें होती हैं वो जुए के अंदर। अब ये सवाल सहाबा कराम ने क्यों पूछा, इसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल्स की ज़रूरत है। पहली बात तो ये नोट कीजिएगा कि शराब की हुरमत के बारे में ये पहला हुक्म है। कुरान पाक में हमें तीन मुख्तलिफ मौके पर डायरेक्ट और चौथे मौके पर इनडायरेक्ट शराब का जिक्र मिलता है। अरबों में शराब बहुत पसंदीदा थी, लोग शराब को बिनते करीम कहते थे। करूम कहते हैं अंगूर की बेल को, करूमा सॉफ्ट, इसी से फिर करीम लफ्ज़ बड़े सॉफ्ट डेलिकेट पर्सन को कहते हैं। अरब लोग करते क्या थे, जो ये सवाल पूछने का सबब बनी, कि अरब माशरे में कुछ ना कुछ सोशल वर्कर्स होते थे, जिसको आप रिफाए आमा के काम करने वाले कह दें, जो लोगों के लिए बहुत काम करने वाले होते थे फलाह बहबूद का। वो किस तरह से काम करते थे कि जब कभी कहत पड़ता, ख़ास तौर पे सर्दियों में, अब ज़ाहिर है कि फसलें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, लोग भूखों मरने लगते, तो ये लोग एक प्रोग्राम रखते, सारे लोग वहाँ जमा होते, वहाँ दिल खोल के शराब पीते। जब सारे लोग शराब के नशे में धुत हो जाते ना, तो अरबों की एक आदत थी कि शराब के नशे में वो जानवरों को बहुत ज़िबा करते थे। ऐसे वाक़ हमें कई लोगों से, हज़रत हमज़ा से भी मिलता है, कि एक मौके पर उन्होंने हज़रत अली का ऊँट ज़िबा कर दिया था जो उन्होंने अपने वलीमे के लिए रखा हुआ था। तो अब करते क्या कि ये सब अब इमेजिन करें ज़रा, फिर आप बाद में इसको टैली कर सकेंगे किसी और ग्रोथ किसी और चीज़ से, कि सारे जमा हुए, एक किस्म का फंक्शन रख लें, प्रोग्राम रखा, पहले खूब शराब पीते, मस्तियाँ करते, और उसके बाद उस नशे में जो जानवर, ऊंट बकरी, जिसका जो जानवर उनके हाथ आता उसको काट देते। अब एंड ऑफ द डे क्या होता कि जब इनको होश आता, पहली बात है होश आया तो वहाँ जानवरों के ज़िबा किए हुए जानवरों का ढेर लगा होता। अब वो कोई जानवर किसी का था, कोई किसी का था, कोई तीसरे का था। अब करते क्या कि जिसका जानवर ज़िबा हुआ है उसको मुंह मांगी कीमत दे देते, पैसे जितने मांगते तुम्हें हम दे देंगे। अब उसके बाद क्या होता, अब वो इतने गोश्त का क्या करें, उस सारे गोश्त पर फिर जुआ खेलते थे। अच्छा वो जुआ क्या खेलते कि जिसको जितना जीतना है जीतना है। वो बहरहाल होता क्या कि वो सारा माल जो लोगों ने ऊंटों के मतलब गोश्त की सूरत में जमा हुआ था, वो कोई एक शख्स ही शायद जुए में जीत जाता, कोई हार जाता। एंड ऑफ द डे होता क्या कि जब ये सारा गोश्त जमा हुआ होता ना, तो जो जीतता वो उसको जाके तो गरीबों में बांट देता। ये इनका एक कस्टम था कि ये सारा अब गरीब गुरबा जो भूखे मर रहे हैं वो खाएंगे, और अपने इस काम को बहुत ही अच्छा काम कहते थे। फी जमाना आप इसका क्या नाम लेंगे, कोई बता सकता? क्या ये आज के मॉडर्न दौर का फंड रेजिंग डिनर नहीं है? आप सोचें, नाचो और गाओ और कूदो और उछलो, और उसकी कमाई से जाके गरीबों की मदद कर दो। सैलाब जदगान की मदद करनी है, और खूब एक बड़ा सा कंसर्ट रखो, टिकटें जमा होंगी, और कर दो, और क्या हर्ज है, नीयत तो अच्छी है और लोगों को फायदा होता है। अब इस एक आयत में आपको पता लगा कि शराब और जुआ और तीसरी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का रब्त मिल गया। ये वजह कि इस एक आयत में खम्र, मैसर और माज़ा युनफिकून तीन सवालों को जमा कर दिया गया। सहाबे कराम ने जब ये देखा कि इस तरह कर रहे हैं, और इसमें बज़ाहर आप देखें कि नफ्स की तस्कीन के सारे सामान भी हो रहे हैं, नाच गाना उनको बड़ा अच्छा लगता था वो भी हो गया, शराब पीने में मज़ा था वो भी हो गया, शोहरत बहुत थी, और ऐसे लोग जब ये फंक्शन हो रहे होते थे इसको इतना पसंद करते थे, ऐसा काम करने वालों की फिर तारीफें करने के लिए उस जगह शायर बैठे होते थे, कसीदे पढ़ते, ओ उसने इतना गोश्त काटा, उसने इतनी शराब पी, उसने इतने गरीबों को दिया। शायर उस दौर के ऐसे ही हैं जैसे आज का मीडिया, जैसे मीडिया जिसको चढ़ा दे वो चढ़ जाता है, उछाल गिराए गिर जाता है ना। उस दौर में जिस बंदे से दुश्मनी लेनी होती थी ना, तो किसी शायर को, पोइट को हायर करते थे और कहते थे इसके खिलाफ़ बातें करो, वो इतने उसके खिलाफ़ शेर व शायरी के ज़रिए से बातें फैला देता कि लोग उसके खिलाफ़ हो जाते। इस तरह किसी को उछालना होता तो उसके लिए शायरों को हायर करके पैसे देते, और वो इस तरह पैसे देते, और नतीजा क्या था कि फुल कवरेज उनको प्रेस की मिल जाती। सहाबे कराम के दिल को ये बात ना लगी कि एंड ऑफ द डे पैसा जो जा रहा है वो गरीबों को तो जा ही रहा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बीच में जो कबाखते हैं ये क्या, शराब बुरी, जुआ उससे बुरा, खड़मस्तियाँ जो कर रहे हैं वो उससे बुरी, तो वो खुद से अकल से नहीं कह लेते थे, नहीं कोई बात नहीं ना, अब इनकी मर्जी है, चलो इनका शौक है ना, अब क्या किया जाए, देखो नीयत तो अच्छी है ना, नहीं, यस सलूना का फौरन आपके पास आते थे। आज के हालात से ज़रा इसको पहले रिलेट करके देख लीजिए कि आज हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, कहते हैं क्या हर्ज है, नेकी तो कर रहे हैं ना। मैं इसको एक छोटी सी मिसाल से आपको देना चाहूँगी कि जो लोग इस तरह से पैसा जमा करके इंसानियत की फलाह व बहबूद करते हैं, क्या यानी ये जेन्युइन तरीका है, देखें कि इस तरह की चीज़ें जमा करके जो लोग पैसे जमा करते हैं या जो लोग ऐसी जगहों पे पैसे देते हैं, सच बताएं क्या उस दुख और दर्द की वजह से देते हैं, या उस कॉन्सर्ट के अंदर अपनी पसंद के गुलकारों को सुनने के शौक़ में देते हैं, क्या इसमें इखलास रहता है? मैं आपको मिसाल देती हूँ, अल्लाह ना करे एक औरत है उसके बच्चे को चोट लग गई, बीमार है, फौरन उसको हॉस्पिटल में ले गए, एडमिट हुआ, डॉक्टर कहता है फौरन $10,000 का या 10,000 करोन का इंतज़ाम करो और इस बच्चे का इलाज शुरू करें, तो माँ क्या कहेगी, मुझे पहले गाने सुनवाएं, कुछ दे, फिर मैं खुशी से 10,000 करोन दे देती हूँ बच्चे के लिए, दे कहेगी ये बात, नहीं मुझे तो पहले कोई इस पैसों का डिनर खिलाएं, कुछ खिलाएं फिर दूंगी, माँ तो एक सेकंड से पहले देगी उसको, उसके तो गम लगा हुआ है कि मेरा बच्चा है, मेरा दुखी बच्चा, मेरा बच्चा बीमार हो गया। अब इस मिसाल को ले आए कि जो लोग हकीकत में इंसानियत का दर्द रखते हैं ना, क्या वो गाने सुन के फ्लड वालों का की मदद करेंगे? वो जलजले में फंसे लोगों को छोड़ के कहेंगे ठहर जाओ, पहले हम गाने सुन के आते हैं, ठहरो ठहरो अभी नहीं, इनकी मदद करना, पहले शो करो, उसकी डेट रखो। और आपको होता है 15-20-25 दिन तो मामूली बात है इसकी तैयारियों में। जलजला आज आया, और मैंने एक दफ़ा, मतलब आज मिसाल दे रही हूँ, पुरानी याद आ गई बात, कि एक जलजला आया और उसके तकरीबन 3 हफ्ते बाद का मैंने एक फ्लायर देखा कि जिसमें था कि इस फंड रेजिंग के पैसे होंगे वो जलजला जदगान को जाएंगे। तो मैंने वहाँ भी खड़े होकर सोचा कि वो बेचारे तो 3 हफ्ते में पता नहीं मर कब गए होंगे, और जब ये कंसर्ट होगा, लेकिन उनकी इंतजामी मजबूरियाँ कि इधर किसी को बुलाना है, किसी को रखना है, कोई हॉल लेना है। तो आप बताइए कि ये जो खेल तमाशे के ज़रिए से इंसान पैसा जमा करता है, क्या ये अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी होती हैं या फिर उसके लिए? अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे पैसे को क्या करना है तुमने? अगर वाकई तुम्हारे दिल में इंसानियत का दर्द है, शौक़ है, मोहब्बत है, तो फिर तुम इसके लिए खुद जल्दी करो, तुम्हें देर करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा इसको तुम अच्छा ना कहो। और लोग इस आदत से यानी इतने यूज़ टू हो चुके थे कि शराब को भी अच्छा कहते थे। फिर कहते थे शराब इसलिए अच्छी है कि इसको पीकर देखो गरीबों का फ़ायदा नहीं होता। लोग घरों के घर लुटा देते, सदका खैरात करते। और लिहाजा इसको बाज़ लोग समझते थे कि ये देखो नेकी की तो चीज़ है ना, कोई हम बुरा तो नहीं कर रहे। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कुल फी ही मा इस्मुन कबीर, इन्हें को इन दोनों में, खमर और मैसर, शराब और जुए में बहुत बड़ा गुना है। हाँ, मनाफी लिन्नास, कुछ फ़ायदे भी हैं। एक तो फ़ायदा यही था कि गरीबों को बहुत दे दिया करते थे, चैरिटी थी। दूसरे अगर आप देखें तो शराब के कुछ फ़ायदे हमें दुनिया में दिखते हैं। मसलन आप देखिए कि शराब बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ समझी जाती है। आप शराब बेच ले और आपको फिर कुछ और काम करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि शराब बेचने वाले को भी किसी और काम की ज़रूरत नहीं, वो भी उसका काम इस तरह से होगा। आज भी लोग जब कारोबार करते हैं तो वो कहते हैं क्या करें, शराब का नफ़ा बहुत है, इसके बगैर बाकी चीज़ें बिकती नहीं, इसके बगैर लोग जो हैं वो बाकी चीज़ें नहीं लेते और देते। तो आप ज़रा दीन का मिजाज देखिएगा पहले। मिसाल है कि हम सुनने वालों में से हम किसी को जानते हो जो शराब बेचता है या जिसका शराब का कोई काम है। या एक छोटी सी फिर बात कहूँगी जिससे फिर इंसानी अक़ल पे हैरत होती है। आप देखिए कि इन चीज़ों को आज ग्लैमराइज कैसे किया गया। एक लफ्ज़ है शराब खाना और उसके पैरेलल बोलते हैं बार। कितना प्यारा लफ्ज़ है बार। कोई कि आप क्या काम करते हैं, हमारा बार है, और कोई पूछे आपका क्या काम है, आपके हमारा शराब खाना है। कैसा लगता है? साउंड से पता चलता है। आपका क्या है जी? हमारा कसीनो है। माशाल्लाह, कसीनो से हसीनो लगने लगता है। अच्छा जी, आप इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ये हमारा जुबा खाना है जी। कैसा लगता है सुनने में? सूद है, हम सूद का काम करते हैं। नहीं, हम इंटरेस्ट का काम करते हैं। मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आ जाती है कि एक वक्त आएगा कि लोग नाम बदल के हराम को हलाल कर लेंगे, और उसमें सूद का लफ्ज़ भी आता है। इंटरेस्ट लफ्ज़ ही कितना इंटरेस्टिंग है, हाँ? लोगों का इंटरेस्ट ही सारा उस चीज़ में कर दिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कभी सोचो तो सही, ये चीज़ें जो तुम्हारे अक्लों पर पर्दे डाल दें, जिसकी नुकसान कितने हैं लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता, तुम इसके थोड़े से फ़ायदे पे रहते हो। हाँ, इससे जिस्म को गर्मी मिलती है, ये इसका फ़ायदा है। हाँ, इससे जी आप सारा टेम्परेचर बंद कर दें घर का और शराब पी के धुत लेटे रहें क्योंकि आपको सर्दी बहुत लग रही थी, अब ठीक हो गए। बाज़ लोग अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए पीते हैं, उनको नफ़ा है। कुछ कई इस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। अल्लाह का अंदाज़ देखिए कि एकदम लठ मारनी काम किया। आप पढ़ेंगे यहाँ ये हुक्म है, अब इसके बाद आप सूरह निसा में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप सूरह मायदा में पढ़ेंगे, और आगे जाके आखिर में फिर आपको सूरह नहल, सूरह रोम में भी इसका इशारा मिलता है। इस्लाम का मिजाज देखिए कि जहन साजी की जा रही है। हम जब तबलीग करते हैं ना डंडे के ज़ोर पे, जो बात मैं कहने लगी थी आपको कि आप मिसाल है किसी एक को जानते हो, अल्लाह ना करे कि कोई किसी का करीबी ऐसा हो कि जिसके कारोबार में कोई ऐसी चीज़ हो, आपके यहाँ यहाँ से जाते ही मैंने तो लठ मार के उनके पीछे पड़ जाना है। कभी ना करें। इस्लाम का मिजाज देखे, पहले क्या कहा, इस्मुन कबीर व मुनाफियुल नास व इस्महुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। पहले इस्म की बात की, फिर नफ़े की। पहले उन लोगों को अल्लाह से तो जोड़े। देखिए, एक बंदा शराब पीता या पिलाता है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो और ही बुजुर्गों को खुदा बनाया हुआ है, शिर्क है, बिदत है, पीता रहे पिलाता रहे शराब, ये तो बात की बात है। असल चीज़ तो तौहीद है ना। आप चाहते ना कि लोग ये काम छोड़ें, ऐसी चीज़ों में ना पड़ें, तो वही करें जो आप कर रहे हैं। कोई खूबसूरत बात और उनको सुनाएं, अल्लाह से मोहब्बत की, कुर्ब की, नमाज की, जन्नत की बात उनको दिखाएं, आखरत की जन्नत। आप जब वहां के नफे दिखाते हैं लोग खुद ही छोड़ देंगे। हम क्या करते हैं, कुरान हम सुन रहे हैं, मैं सुना रही हूँ, और हमारा दिल चाहता है इस शहर के सारे शराबखाने बंद हो जाए, कभी नहीं होगा। ये गैर फितरी तरीका तबलीग होता है। इसलिए मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहती रहती हूँ कि इन बातों को घर जाके बेतुक्का ना शेयर किया करें, अभी अपने ऊपर रखें। आपके दिल ने मान लिया तो अल्लाह से दुआ शुरू कर दे, फिर आप देखेंगे कि आपकी बात में भी असर होगा। हमेशा तबलीग बेसिक से शुरू करें, उसको अल्लाह की पहचान है, अल्लाह से मोहब्बत है। आप कहते हैं ये गुनाह, वो कहता है मैं नहीं मानता। कौन कहता है अल्लाह, मैं नहीं मानता किसी अल्लाह को, अब क्या करेंगे आप? फिर आप रोध होके आ जाते हैं। बस यकीन करें, हर इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह के हुक्म को मानने की अर्ज है। हमारा एटीट्यूड उसको अल्लाह से दूर करता, हम चिड़चिड़ा देते हैं। तो बहरहाल चिड़ का अंदाज़ नहीं, उनके फ़ायदे की बातें करो। आपके शराब बुरी, वो कहेंगे तुम्हें क्या पता इससे कितना फ़ायदा होता है, तुम्हें क्या पता इससे क्या होता है क्या नहीं होता। तो कहा कि नहीं, उनको को हाँ हमें पता है इसमें बहुत फ़ायदा है, लेकिन याद रखो कि नफ़ा तो छोटी चीज़ है, इसम तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ तक बात हुई और आगे दूसरा टॉपिक जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बात मज़ीद शराब और जुए के बारे में करना चाहूँगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने फ़रमाया, जिब्राइल ने मुझसे फरमाया कि हज़रत जाफ़र की चार बातें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और आपको बताई जा रही हैं। नंबर एक, कि उन्होंने कभी शराब नहीं पी, क्योंकि शराब अकल को ज़ाया कर देती है। दूसरी बात, कि बुत कोई नफ़ा नहीं देते, इसलिए जहालत में भी कभी बुतों को नहीं पूजा। तीसरा, बीवी और बच्चियों के बारे में गैरतमंद हूँ, इसलिए कभी जिना नहीं किया। यानी जिना करते हुए ये ख्याल आ जाता है ना कि मेरी बीवी या बेटी से अगर करे तो मुझे कैसा लगेगा। और चौथी बात है कि झूठ चूँकि जिल्लत और कमीनगी है, इसलिए मैंने कभी नहीं बोला। इसी तरह एक तवील रिवायत है जो पूरी नहीं लिखाऊंगी यहाँ, सिर्फ उसका शुरू का हिस्सा लिखे, बाकी बातें आपको इंशाल्लाह अगले दफ़ा जब ये टॉपिक आएगा वहाँ लिखाऊंगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शराब की वजह से 10 लोगों पर लानत है। बस अभी आपका इतना ही सबक है, वो 10 कौन है वो अगली दफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आप देखिए कि शराब जो है, इसके बारे में कुछ आपको साइंटिफिक फिगर्स भी दे दूं। पहली बात है कि 3 घंटे चाहिए होते हैं 2 ग्लास अल्कोहल को प्रोसेस करने के लिए। यानी अगर कोई 2 ग्लास शराब के पी लेता है तो 3 घंटे चाहिए उसको मैदे में से आगे ले जाने के लिए, जिसके नतीजे में यानी इतनी एनर्जी उसके स्टमक को चाहिए होती है कि उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ज़रा यहाँ समझिएगा, ये जो शराब पीते ही नशा हो जाता है ना, क्यों होता है किसी को पता है? तो फिर सुन लें कि शराब पीते ही सारे जिस्म की जो एनर्जी होती है ना, उस शराब को डिसॉल्व करने में चली जाती है, तो जहन के अंदर से सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। और फिर जब वो हज़म हो जाती है, शराब निकलती है, तो फिर नशा खुलता है, फिर नशा उतरता है। और उस नशे के दौरान शराबी किसी को सजदा कर ले, करा लो, बहनों बेटियों से जिना कर ले, हो जाएगा, रिश्तों का तकद्दस ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, शराब को उमुल खबाइस कहते हैं, सारी खबीस चीज़ों की बीमारी बुराई। जर्मनी का एक डॉक्टर है, उसका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं है, उसने कहा कि सारे पब्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं अगर, तो गालिबन अबाउट 50-60% हॉस्पिटल और जेल खाने बंद हो सकते हैं अगर शराब के अड्डे बंद कर दिए जाएं। और इस्ट्रो कितनी बुराइयां होती है, कितने इसके नुकसान होते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि $12 बिलियन कनाडा में एक साल में शराब पर खर्च होता है, $7.5 बिलियन एल्कोहल एव्यूज़ पर खर्च होते हैं, यानी इसके नतीजे में जो खराबियां पैदा होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर इसके नुकसानात, नंबर एक, बंदा बहुत बातूनी हो जाता है, ओलफुल बोलता है, कई दफ़ा अपने राज दे देते हैं, लोग अपने पिन कोड्स दे देते हैं, बैंक के नंबर्स देते हैं, जिससे फिर हादसात होते हैं, ठोकरे खाते हुए गिरते हैं, ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, जिगर काम करना छोड़ता है, माँ अगर प्रेग्नेंट है तो फीटस को नुकसान होता है, गले का कैंसर, मेदे का कैंसर, सेक्सुअल हार्मोन्स को कम करता है। ये भी एक अजीब कहानी है, लोग जिस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये पीते हैं उससे आखिर में उनकी ताकत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। फिर कहते हैं कि 40s में ही ऐसे मर्द जो होते हैं वो मर्दानगी की सलाहियतों से महरूम हो जाते हैं, और ये वाकई कुछ औरतों की शहादतें भी हैं कि जिनके मर्दों में ये खराबियाँ होती हैं वो बाद में कितने मिसफिट हो जाते हैं। फिर ड्राइविंग के नुकसान देख लीजिए, कितने हादसात होते हैं, इस शराब की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बीवियों को मारते हैं लोग, फिर आप देखिए कि बाज़ लोग ख़ुद को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। और कहते हैं कि 1994 में से लेके उसके बाद से अब इसमें जो इजाफा है पीने वालों की तादाद में, वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। 6,000 से ज़्यादा ज़्यादा जो डिजीज़ थी कनाडा में, वो अल्कोहल की वजह से हुई, जिसमें कार एक्सीडेंट, खुदकशी, बीमारी सब आती हैं। अच्छा, एक रिपोर्ट में था कि क्यों पीते हैं लोग शराब अमूमन आज के दौर में, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात है पीयर प्रेशर दूर करने के लिए, ख़ास तौर पे यंग्स इसका बहुत शिकार होते हैं कि नहीं, सब लोग हमें बुरा कहते हैं तो बस हम भी, फिर वह यानी सब पी रहे हैं तो हम भी पी रहे हैं। दूसरी वजह प्लेयर के लिए, मज़ा लेने के लिए, पता नहीं कैसे आता है मज़ा, बड़ी कूल लगती है। फिर बास लोग तजस्सुस के लिए पीते हैं कि एक सिप ले के देखते हैं होती कैसी है, और वो एक सिप पिया तो फिर अगला खुद ही पिया जाता है। फिर बोरियत दूर करने के लिए, जैसे चाय पीते हैं हमारे यहाँ, चलो बैठे हैं चाय ना पी लें तो वो शराब पी लेते हैं। फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने के लिए कुछ लोग पीते हैं। फिर एक और वजह कि पढ़ाई वगैरह का स्ट्रेस दूर करने के लिए पीते हैं, और ये जो रिपोर्ट थी ये स्टूडेंट्स की थी कि हम जब बहुत स्ट्रेस में आते हैं तो हम पीने लगते हैं। फिर एस्केपिज्म के लिए, हम फरार चाहते हैं इस दुनिया से, अपनी दुनिया ख्वाबों की। फिर इसी तरह बस लोग जो हैं लीगली पीते हैं पार्टीज में, और बड़ों की देखा देखी, और उनकी मजबूरी है कि फलां सदर और प्राइम मिनिस्टर और फलां, उनके साथ तो पीनी पड़ेगी। थोड़ी सी मैसर पे भी बात कर लीजिए। मैसर जुए को कहते हैं। आप ज़रा सोचिए कि 10 लोगों ने एक जगह पैसा लगाया, सट्टेबाजी, उसके अंदर नतीजा क्या निकला, एक जीता, 19 के दिल में क्या आएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला कहते हैं इससे बुग्ज़ और रकाबत पैदा होती है। इनामी बॉन्ड्स, कोई ऐसी चीज़ें, एक हदीस है उसका भी खुलासा ही बताती हूँ, कहीं जाके कोट भी कराऊंगी। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि हर वो चीज़ जिसमें चांस हो, जिसमें हम कहते हैं ना चांस लेते हैं, वो हराम है। बस ये आसान सी कोटेशन है, आगे जाके इसको बड़े करके बता दूंगी आपको। आप कहते हैं कि कारोबार में भी होता है चांस, नहीं, कारोबार में जब पैसा लगता है तो रिस्क होता है, लेकिन जुए में जो लगता है वो चांस है। आपने एक नंबर लिया, लॉटरी में निकल आया, हराम है। आप इसकी बीसीओ किस्में देखेंगे, आगे हम इस पर डिटेल से बात करते जाएंगे। तुक्का लग गया, आपका नंबर आ गया, उनका आ गया, इसीलिए हर तरह की लॉटो लॉटरी वो भी इसी के अंदर आती है। प्राइस बॉन्ड्स इसके अंदर आते हैं, और बहुत सारी इस किस्म की कबाखतें इसके अंदर आती हैं, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की नज़रों में करता है। फिर इसी तरह ये जो यसर है ना, यासिर लफ्ज़ भी उर्दू में इसी से ही है, तकसीम करने वाला। तो एक तो यसर में आसानी से मिलने वाला माल, दूसरा इसका एक और मानी होता है तकसीम करने वाला, डिवाइडर, यानी जो लोग ले के इधर उधर से जमा करते हैं। फिर इसी तरह मुस्लिम की एक रिवायत है कि चौसर खेलने वाला गोया के खिंजीर के खून में हाथ डालता है, शतरंज वगैरह जिसको कहते हैं। आप देखिए एक छोटी सी बात समझ लें, जिस खेल के अंदर पैसे लगा के आप खेलें वो जायज़ नहीं है। यानी ताश लोग खेलते हैं, खेलने पता नहीं कैसे होते हैं, ना मैंने कभी खेलने हैं ना मुझे पता है, लेकिन अगर आप पैसे लगा के खेलते हैं तो वो जायज़ नहीं है। फिर इस तरह आप देखिए कि जुए के नुकसानात में एक तो यही है कि जीतने और हारने वाले के बीच में दुश्मनी, फिर दूसरी बात यह है कि दौलत सारी एक हाथ में जमा हो जाती है, जो बिल्कुल ही फितने का सबब बनती है। फिर बेकारी का आदी हो जाता है जवारी, कभी भी उसको आप देखेंगे कि वो काम नहीं करेगा। हर वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद, जिक्र और नमाज से गफलत, बातिल माल खाने का एक तरीका है। फिर घरेलू सिलसिले कितने ख़राब होते हैं, अक्सर ऐसे जवारियों की अपने बीवियों से लड़ाई रहती है। फिर लखपति जो है वो मुफलिस और कलाश हो जाते हैं, कुव्वत अमल ख़त्म हो जाती है। आपको पता है कि एक शख्स था, बेरोज़गार था, उसने क्या किया, अपने सारे एसेट्स बेचे और एक लॉटरी का टिकट ख़रीद लिया कि चलो बस अब एक मौका लेते हैं, चांस लेते हैं। लॉटरी ना निकली, खुदकुशी कर ली, कि जब पैसा तो सारा ख़त्म हो गया तो मैंने क्या करना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी अकल से ना सोचो, बल्कि अल्लाह के हुक्मों को जानो। वयसअलूनक मा युनफिकून, अब फिर पूछते हैं क्या खर्च करें। टैक्स के साथ तो समझ गए, लेकिन अब थोड़ा सा इसको अलग भी देख लीजिए। पीछे भी ये सवाल था, वहाँ ये बता दिया वालदैन को, रिश्तेदारों को दो, यहाँ का हाँ कुले लफ, ज़ायदा ज़रूरत सब खर्च कर दो। अफ का लफ्ज़ आइन फा वो से, अफ व दरगुजर उर्दू में बोलते हैं। आफ़ियत का लफ्ज़ भी इसी से, इफ़त का लफ्ज़ भी इसी से। ज़ायदा ज़रूरत, किसी चीज़ के लेने का कसद करना। अब इस आयत को सिर्फ आप लें, पूरे कुरान में से सिर्फ आप ये आयत ले लें, और अफसोस और माजरत के साथ कहूँगी कि कुछ उलमाए कराम ने वाकई लोगों को माल खर्च करने का के लिए बस यही एक आयत बताई हुई है कि बस जो है अपना रखो, बाकी सब मस्जिद में ले आओ, सब खर्च कर दो। और आज हमारे यहाँ माल के बारे में कितने गलत नज़रियात हैं कि माल रख नहीं सकते। इस पे हमने पिछले लेसन में भी बात की थी कि माल बुरी चीज़ नहीं है। तो अभी शायद पे आप कह रहे हैं सिर्फ ऑफ ले लो, इससे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रख ही नहीं सकते। अगर आपके पास 100 करोन भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वो नाजायज़ है, तो बात यह है कि दुरुस्त बात यह नहीं है। सिर्फ एक ही आयत नहीं है, इस पे तीसरे पारे के आगाज़ में तकरीबन एक रुबा तक हम बात करते रहेंगे। यहाँ सिर्फ ये कहा कि ईमान का दरवाज़ा है, तकवा है, देखो ज़रूरत देखो। वाकई दुनिया में कहत पड़े हुए हैं, बीमारियाँ हैं, जंगें लगी हैं, या लोग भूखे मर रहे हैं, जहालत की मौत मर रहे हैं। अभी इस्लाम को ज़रूरत है, दीन को ज़रूरत है, तालीम काम करने की ज़रूरत है, फिर दो, खुल के दो, लेकिन ज़रूरत को ख्वाहिश ना बनाओ। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सी बात आपके सामने रखूँगी कि कुछ लोग जब कभी उनसे पैसे रुपए की बात की जाए तो कहते हैं हमारी तो अपनी ही नहीं पूरी पड़ती। सुना भाई ये जुमला? और बल्कि जितना पैसा बढ़ता जाता है ना उतनी अपनी कम पूरी पड़ती है। वजह क्या है कि जब वॉन्ट्स नीड्स का दर्जा हासिल कर लेती है ना तो बाकी पूरी नहीं पड़ती। जब दिन ब दिन हमारा अपनी ज़ात पे खर्च ही बढ़ता जाए, खर पे के साथ घर बड़ा करते जाएं, आप इमेजिन करें ना, आप 2 कमरे के घर में थे, एक मर्द कमाता है घर में, गुजारा हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा बेटा बड़ा हुआ, उसने कमाना शुरू किया, माशाल्लाह इनकम डबल हो गई, लोग तो बीवी को भी ले जाते हैं तो 3 गुना हो गई। चले अब इनकम बढ़ती गई तो अब क्या होना चाहिए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरियात पूरी हो गई, अब 2 गुना बच रहा है, कुछ और थोड़ी कुशादगी करके बाकी फिर एक्स्ट्रा हो गया। फिर लोग क्या करते हैं, उसको ज़रूरियात को बढ़ाने लगते हैं। नतीजा क्या होता है कि जितने कमाने वाले होते हैं उतने ज़रूरत पूरी नहीं होने वाली होती। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को सही रखे ना तो अमूमन उसको तंगी नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के बेहतरीन मामलात क्या हैं कि चीज़ों के दरमियान में रहो। मा आला मन इक्तसिद, 4 लफ्ज़ बनते हैं कि वो कभी भी मोहताज नहीं होगा जो दरमियाना रवि पर रहेगा, उसको कभी कर्ज़ों के बोझ में अपने आप को दबाना नहीं पड़ता। ये भी एक हमारी सोच है ना कि ऐसे नहीं पूरी हो रही तो फिर वैसे पूरी कर लो। अमूमन लोग आप देखिए कि कहाँ खर्च करते हैं, ज़रा अगर आप खर्च करने की लिस्ट देखें, इस आयत को अगर आप देखें तो बड़ा प्यारा अंदाज़ इसमें एक मिल जाता है कि जब एक इंसान खर्च करने लगता है तो फिर कुछ इस किस्म के खर्च होते हैं कि एक शादी पर लाखों खर्च करता है। दुल्हन का ड्रेस कितने का बनता है आजकल, उसके मेकअप पर कितना लगता है, आप अगर एक लंबी लिस्ट बनाए ना तो आप समझ जाएंगे कि आज लोगों ने ज़रूरत को ही कितना बढ़ा लिया। कहते क्या करें फिर मजबूरी है, शादियों पर डेकोरेशंस में लाखों लगता है, एंटीक्स के नाम पे असल चीज़ जो 1 रुपए की होती है वो 20 रुपए की ले आते हैं। फिर आप देखिए कि नाजायज़ जगह खर्च करने की कुछ चीज़ें आपके सामने सिर्फ शौर को बेदार करने के लिए बोल देती हूँ, शायद किसी को सोचने का मौका मिल जाए। बस दफ़ा आप देखिए कि क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स के पोस्टर्स पर खर्च होता है, चाहे 5 रुपये लगे, खर्च तो हुआ ना, उसी 5 रुपए की एक ईंट लेके आप किसी दीन के लिए भी तो दे सकते थे ना, कोई एक कलम लेके किसी को दे सकते थे ना। तो लिहाजा खर्च के अंदर गलत चीज़ें हैं। फिर आप देखिए कि बच्चों पर गैर ज़रूरी खर्च करना, ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ, बच्चा पैदा बाद में होता है उसका कमरा पहले सज जाता है, उस गरीब को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको मैचिंग जूते पहनाएं या किस कंपनी के पहनाएं, सिर्फ आपकी ख्वाहिश है और बच्चे पे लगर है। फिर इसी तरह आप देखिए कि तफरीह के नाम पर म्यूज़िकल नाइट्स, ईव टिकट्स, देखिए ब्रांडेड नेम्स का शौक होना, बुटीक का जो एक हवा चढ़ पड़ा हमारे जहनों में, किस बुटीक का है, लोग कहते हैं कि आईफोन लिया, वो क्या होता है सबको ही पता होगा, बोले शाबाश, इंटरनेट फ़ोन ना, पी फोन क्या होता है, पुराना फ़ोन, तो वो ले लें। मुझे तो कोई शर्म नहीं आएगी अगर मैं कहूँगी मैंने पी फोन लिया है। आप आई पे खुश हो, मैं पी पे खुश हूँ, कोई जे पे खुश हो जाए, कोई के पे खुश हो जाए, खुशी होने ना इस्तेमाल नहीं करना आता। और माइयाँ कह रही होती की लह दिता ने मैनू, है चलाना भी नहीं आता, तो बस लेने का शौक है तो लेंगे ना। अब सब ने फलां की अम्मा ने लिया हुआ तो आप क्यों ना लें, हैं, अल्लाह अकबर। फिर बच्चों की सालगिरहों के फंक्शन 2-2 दिन तक चलते हैं, अब आप ना शुरू हो जाएं सुन के। लड़के की माँ ने 45 लाख का डायमंड का सेट पहना बारात में, तो फिर अगले दिन जब दुल्हन की माँ गई लड़के के घर तो रातों रात ज्वेलर को निकल खुलवा के उसकी दुकान उससे बड़ा सेट लिया, क्योंकि जो पहले ले चुकी थी वो इससे छोटा था। तो इज़्ज़त का मसला था बेचारी की, फिर इज़्ज़त भी तो नहीं रहती ना अगर छोटा सेट पहन जाएंगे। फिर बाद दफ़ा फ़न के नाम पे आप देखिए करते हैं, किसी की तो बड़ी जाहिलाना बात पता चली कि बच्चों की शादियां नहीं होती थी, तो किसी ने उनको टोटका बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम एक तोता लो और एक तोती लो और उनकी शादी करो, तो इस शगुन से तुम्हारे बच्चों की शादी होगी। यकीन करें, ये 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गई, तो मुझे खुद किसी ने ये वाक्य सुनाया, मैंने एक बहुत बड़ी इल्मी महफिल में ये बात सुनी, वो सुनाने वाली खुद बता रही थी कि वाकई उन्होंने कार्ड छपवाए पूरे खानदान पूरा, और वहाँ एक तोता और तोती की शादी हुई, और वजह कहती कि इसके बाद अब हमारा गुमान है कि हमारे बच्चों की, और अब आप ना शुरू कर दें जाके, आज अम्मी अबू को कहें कि हमें भी तोता तोती की। बाद लोग गुड्डे गुड़ियों की करते हैं, फिर शो ऑफ के नाम पे हम जो खर्च करते हैं, फिर आप देखिए कि शौकिया होटलिंग, ऐसे ही बस शौक है, जुबान का चस्का, फिर विश कार्ड्स पे खर्च करते हैं जो, ऐसे ही सबको पता होता है ये कार्ड आपने 10 लोगों को खरीद भेजा ये कह करके, ओनली फॉर यू। बाद लोग जस्ट फॉर यू का लिफाफा खरीदते हैं और एक नहीं 10 खरीदते हैं, सुबहान अल्लाह। हाँ, फिर आप देखिए इंटरनेट के फालतू आवर्स, मोबाइल्स, शौकिया कोर्सेज करना, जहेज, क्लबों की मेंबरशिप, हेल्थ क्लब, फलां क्लब, फलां क्लब, कभी गई नहीं, बस सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग पे जा रहे थे, क्या करें पैसे दिए हमें, अब एक दिन तो चले जाएं, जान पे बोझ पड़ा हुआ है, हर साल नई गाड़ी का मॉडल, बेमकसद ड्राइविंग, गैस, यानी एक लंबी लिस्ट है। यकीन करें, जब ज़िंदगी में मकसद नहीं होता तो हम अपने पैसे को भी ज़ाया करते हैं, कोई कुत्तों की और मुर्गों की लड़ाइयों पे, और कुछ किसी ने लड़ाई करवाई अपने कुछ जानवरों की, फिर उस पे पार्टी रखी जो जीता उसने, फिर इसी तरह कार्ड, मेहंदी, उपटन, एक लंबी लिस्ट है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगी। का कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम अल आयाती, अक्ल करो, होश करो, अल्लाह तुम्हें बयान कर रहा है इन आयतों से, ज़िंदगी गुजारो, तुम्हें हो क्या गया, कोई तुम दूसरी दुनिया से आए हो या तुमने इसी दुनिया में बैठे रहना है। लअल्लकुम तत्तफक्करून, तत्तफक्करून, तफक्कुर किया करो अल्लाह की बातों पे, इन आयतों पे गौर करके ज़िंदगी को समझा करो, इस दुनिया के लिए नहीं आए, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया और आखिरत में। अब देखिए एकदम स्टाइल चेंज हो गया ना, फरमाया शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र करो, तुमने सारी फ़िक्रें इस दुनिया की क्यों लगा ली, जितना खर्च करते हो सिर्फ इस दुनिया के लिए करते हो, बल्कि जाओ इधर उधर दोनों तरफ देखो, फ़िक्र करो, और तुम्हारी तो ख्वाहिशें नहीं पूरी होती, ज़रा कुछ यतीमों का हाल भी पूछ लो। वयसलूनक अनिल यतामा, एक और सवाल सहाबे कराम का था ये भी कि अल्लाह के नबी यतीमों का क्या होगा। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कह दीजिए कि उनकी इस्लाह करना बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन वह इन तो खा ले तो हूँ फ़ैखवानुकुम, हाँ अगर तुम इनके खाने को अपने खाने में, इनके खर्च को अपने खर्च में मिला लो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, और बाकी गलत नियत से करोगे तो याद रखना कि वल्लाहु यालमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह खूब जानता है फसाद करने वाले को इस्लाह करने वाले से। वलौ शा अल्लाहुल आनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तो तुमको मुश्किल में डाल देता, अनता किसी को मुश्किल में डालने को कहते हैं, इनात ऐसी मुश्किल जिससे कोई निकल ना सके। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला ग़ालिब और हिकमत वाला है। इस आयत का एक ख़ास शान नज़ूल है, आपको सूरत निसा में बहुत तफसील से यतीमों के हकूक़ की बात पढ़ेंगे, और एक और आयत सूरह बकरा ही में आती है कि जिसमें कहा गया कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आग डालते हैं। ये आयत जब नाजिल हुई तो कुछ सहाबा जिनके पास दूसरे मुसलमानों के बच्चे पल रहे थे उनको बड़ी फिक्र लगी। आप देखेंगे इसका भी रब्त अगली आयतों के साथ जोड़ूंगी इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ, कि किस तरह सोसाइटी में जब एक चीज़ कत्लो गारत गरी आम होती है तो फिर कितने बच्चे यतीम हो जाते हैं और कितनी औरतों को बेवा होना पड़ता है, और बाकी बाकी जो बातें अगली आयतों में आएंगी। तो यहाँ कहा कि तुम उनके, अब हुआ क्या कि सहाबा इतना डर गए कि उनका सारा खाना पीना अलग कर दिया, घर में एक यतीम बच्चा पल रहा है, उसके बाप का पैसा था जिससे उसकी खर्च पानी करते थे पूरा, तो उसको बिल्कुल अलग रख देते। अब आपको तो बच्चे अक्सर ही छोड़ते हैं, उनका बच्चा वह खाना ज़ाया होने लगा, क्या करो भाई, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे भाई, ये यतीमों का माल है। बिल आखिर पर यह आयत उतरी कि नहीं वाइन तो खा ली तो हम फ़ैखवानुकुम, कोई बात नहीं इनके और अपने पैसों को मिलाओ, फिर कुछ ये खाएं तुम्हारा तुम उनका खा लो, कोई बात नहीं, बुरी बात क्या है कि अगर तुम इनके पैसे को अपने हड़प करने के स्टाइल में खा लो, गैर यतीम की तरफ से 10 रुपये डालने के बजाय 50 डाल लो, ज़्यादा पका लो, इस शौक में मेरे भी खा लेंगे, तो वल्लाहु यालमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह। यहाँ से आप देखिए कि इस्लाम कितने खूबसूरत तरीके से हर मौजू को लाता है, और इधर इनके खाने में मिलाने से ये भी पता चला कि ऐसे बेचारे पिसे हुए लोगों को एक निशाना ना बना दो, ये कोई अलग ग्रुप ना तैयार हो जाए माशरे का कि ये बेचारे दुनिया से कटे हुए लोग हैं और भूखे हैं और गरीब हैं, तो इनको मिलाओ। वल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तो ख़ुलासा क्या हुआ सारी बात का, कि जब हम अपने माल को सिर्फ अपनी ज़ात पर लगाना चाहते हैं तो उसके नतीजे में वाकई कई लोग जो हैं वो उस माल से महरूम हो जाते हैं। तो सारे सबक में मेरा ख्याल है ये उन सबको में से था जिसमें हमने कई मुख्तलिफ टॉपिक को कवर्स किया है। ये सारी चीज़ें अलग अलग भी आगे जाके आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।